بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کی صورتحال، قبائلی علاقوں میں فوج کا آپریشن اور پشاور میں ہوائی اڈے پر فائرنگ کے بعد کی صورتحال. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. یقیناً ناظرین، آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ منگل کی رات پشاور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پی آئی اے کے ایک مسافر طیارے پر جو ریاض سے پشاور ہوائی اڈے پر لینڈنگ کر رہا تھا، اسی وقت فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں کم سے کم ایک خاتون مسافر جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے. اس فائرنگ کے واقعے کے بعد پہلے قطر ایئر ویز نے، پھر متحدہ عرب امارات کی ہوائی کمپنی نے اپنی پروازیں پشاور کے لیے معطل کیں، تو اب سعودی عرب نے بھی اپنی کمپنی کی پروازیں پشاور کے لیے معطل کر دی ہیں. پشاور ہوائی اڈے پر پی آئی اے کی پرواز پر یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا جب شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کا آپریشن جاری ہے. پاکستانی فوج کا آپریشن گزشتہ 10 جون کو شروع ہوا، جس کے مطابق اب تک کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں دہشت گرد مارے گئے ہیں، جن میں بیشتر تعداد غیر ملکی دہشت گردوں کی ہے. پشاور میں جو حادثہ پیش آیا، اس کا رد عمل آگے کیا ہو سکتا ہے، اور اس وقت جو آپریشن جاری ہے شمالی وزیرستان میں وہ کتنا کامیاب ہے، اور حکومت اور فوج دہشت گردوں کا قلع قمع کرنے میں کس حد تک پرعزم ہیں، اور ان کو اب تک کتنی کامیابی ملی، اور آپریشن کے نتیجے میں لاکھوں افراد جو بے گھر ہوئے ہیں ان کے مسائل اور مشکلات سے حکومت کس طرح سے نمٹے گی، خاص طور پر ایک ایسے وقت جب رمضان المبارک آیا ہی چاہتا ہے، اور بہت سارے سوالات ہیں. کوشش کریں گے ہم ان میں سے بیشتر کا جواب تلاش کریں اپنے آج کے اس پروگرام میں، مگر ملاحظہ فرمائیے ہمارے ساتھیوں کی ترتیب دی ہوئی پہلے یہ رپورٹ. یہ ناظرین، چلتے ہیں سیدھے لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں برصغیر کے امور کے ماہر ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کراچی ایئرپورٹ پر حملہ ہوا، اس کے بعد آپریشن شروع ہوا شمالی وزیرستان میں. آپریشن ابھی جاری ہے کہ اس دوران پشاور ہوائی اڈے پر لینڈنگ کرتے وقت پی آئی اے کے طیارے کو نشانہ بنایا گیا. یہ جو صورتحال ہے ایئرپورٹوں یا ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے کی، اس سے طالبان یا دہشت گرد عناصر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پیغام ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ ہم پر جو بھی کریں، ہمارے پاس بھی کچھ کرنے کی قوت ہے. تو ایک تو اس قوت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جس حقیقت کا مظاہرہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو حقیقت ہے، یعنی اس میں وہ یعنی اس حقیقت کا وجود ہے، اور وہ بہت ہی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری پہنچ کتنی ہے، اور ہم پاکستان کے معاشرے میں کتنے پیوست ہیں، یعنی کتنے انٹرنچڈ ہیں ہم. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یا وہاں کی سوسائٹی کا وہ حصہ بنے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جو مخصوص قوتیں افغانستان کے خلاف جب لڑائی ہو رہی تھی، جہاد افغانستان جس کو نام دیا جاتا ہے، تو اس دوران مختلف تنظیمیں اور مختلف جو حلقے پیدا ہوئے، تو وہ انہوں نے ایک سوشل سپیس بنائی، انہوں نے معاشرے کی ایک سپیس فراہم کی ایسے دہشت گردوں کو پھلنے پھولنے کے لیے، اور اس سپیس ملنے سے یہ ایسے بالکل دہشت گرد نہیں رہے، بلکہ ان کو ایک نظریاتی اور ان کو سمجھا جانے لگا کہ یہ ایک کاز کی علم برداری کر رہے ہیں، یہ پاکستان میں کچھ چاہتے ہیں، اور اسی بنا پر لوگوں کا یہ مطالبہ ہوا کہ آپ ان سے مذاکرات کریں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی پوائنٹ ہے، یہ کچھ چاہتے ہیں، آپ ان کو سنیں. تو ان کی جو یہ لیجٹیمیسی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ جو ان کی ریچ ہے، ان کی پہنچ ہے کہ کراچی میں یہ ایئرپورٹ پر کیسے آ پہنچے، यहाँ पेशावर में कैसे इनको ये पहुंच मिली, तो ये इसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है कि उन्होंने मफाद खसूसी रखने वाले लोगों के साथ एक जगह बनाई है, और ये सोशल स्पेस जो इन इन लोगों की है, ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। वरना इस तरह की चीजें जो है ये स्टेट्स में पैदा होती हैं, रियासतें इस तरह की चीजें करती हैं, उनको वो इस तरह की चीजें बनाती हैं और खत्म भी करती हैं। और अगर मैं आपको मुख्तसर मिसाल दूं, आप इंडिया में लीजिए, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ LTTE बनाई, खुद इंडिया ने बनाई, इंडिया की इंटेलिजेंस ने बनाई और खुद ही उसको खत्म कर दिया, इसलिए कि जब उन्होंने देखा कि अब ये हम पर कुछ करने लगा है, उनका प्राइम मिनिस्टर उसमें चला गया, और जब उन्होंने देखा कि अब शायद हम हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं, तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया, और वो चीज वहां मुमकिन हुई। अब पाकिस्तान में ये चीज मुमकिन नहीं हो रही है, वो उसके वजूहात हैं।
जी
और अगर इंशाल्लाह मुझे आप मेरी तरफ आप फिर आएंगे तो मैं शायद उन वजूहात पर भी कुछ बात हो सकती है,
बहुत
तो
शुक्रिया
ये
आपका,
मेरा
बहुत
इस
शुक्रिया
ताल्लुक
आपका
से मेरी गुजारिश
जी।
आती।
इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर और इंतहाई सरकर्दा तर्ज़ निगार और सहाफ़ी नज़ीर नाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। नज़ीर नाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़
हेलो
नहीं नहीं पहुंच पा रही है। नज़ीर नाजी साहब
हेलो,
जी अस्सलाम वालेकुम। अंद्राबी साहब जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब तक 10 जून से जो ये ऑपरेशन शुरू हुआ पाकिस्तानी फ़ौज का, आप क्या समझते हैं कि कितनी पुरअज़्म है हुकूमत और फ़ौज, और कितनी अब तक कामयाबी मिल चुकी होगी?
देखिए, जो रिपोर्ट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ मीडिया के जरिए, तो उससे लगता है कि अच्छे टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, और हुकूमत के पास यानी फौज के पास इंटेलिजेंस भी है, उनको मालूम है स्ट्राइक कहाँ करना है, और उनके अंदर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है भी, यानी पाकिस्तान की फौज जो है वो उसके अंदर बहुत अच्छी पेशेवराना सलाहियतें हैं, और अगर वो चाहें तो उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो 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 चीज़ें हम देख रहे हैं, जो टेलीविजन पे और मीडिया पे आ रही है, तो उससे ये तासुर दिया जाता है कि शायद ये फौज का इनिशिएटिव है, और इसमें हुकूमत शायद उनके साथ नहीं है, एक ही पेज पर नहीं है। अब ये कितना सही है, मैं इस पर खुद मेरी कोई यानी कोई डेफिनेट राय नहीं है। अलबत्ता मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के हालात की, वो बहरहाल यही है कि वहाँ पाकिस्तान की अंदरूनी अंदरूनी मामला जो पाकिस्तान के हैं, यानी हर मुल्क में जो जी इख्तदार तबके होते हैं वो एक इजमा पर आ जाते हैं, और फिर मुल्क की जुमामिकार बन जाती है हर मुल्क में। आप बर्तानिया ले लें, इंडिया ले लें, कोई भी जी इख्तदार जो तबके हैं वो एक कंसेंसस पर, एक इजमा पर आते हैं, उसको कौमी इजमा कहा जाता है, कौमी इंटरेस्ट कहा जाता है, वो उस पर यकजा होते हैं, और फिर एक हुकूमत चलाने वाली कोई एक हुकूमत बन जाती है। पाकिस्तान का मसला अब भी बाकी है कि वहाँ ये कंसेंसस नहीं है, और वहाँ की सियासत, अगर आप मुझे कहें कि अगर उस सियासत को डिफाइन करना हो, तो वहाँ की सियासत जो है मफाद खसूसी रखने वाले मुख्तलिफ तबकात के दरमियान
जी
रस्साकशी से इबारत है, आपस में रस्साकशी, और उस रस्साकशी में तो आधा मुल्क भी चला गया, और उसी रस्साकशी का नतीजा है कि मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, इसी की कौमी कंसेंसस और कौमी एक एक इंटरेस्ट पर सब मरकूज नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ जो है वो रस्साकशी है। तो ये मसला है, वरना ये ऑपरेशन यानी जहां तक हम देख रहे हैं ये फौजी एतबार से तो कामयाब जा रहा है, और क्यों नहीं जाएगा, ये बहुत बड़ी फौज है, अच्छी फौज है, क्यों नहीं जाएगा। लेकिन यही मसला है कि क्या इसके पीछे पूरी बैकिंग है, क्या सब लोग इसके पीछे हैं। हम वहां देखते हैं, अभी अभी मैं देख कर आया, आज सुबह मैं देख कर आया कि कुछ जमातें, कुछ मजहबी जमातें वो इसके मुखालिफ हैं, बराबर अपनी मुखालफत पर तुले हुए हैं वो, तो लिहाजा वो मामले को जरा तशवीशनाक बनाता है।
जी, अंद्रावी साहब, हमारे साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दीगर मेहमानों से रابطہ हो। अगला सवाल भी आपसे ही करना चाहूँगा। अगर आपको याद हो तो जो गुज़िश्ता
जी,
पार्लिमानी इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में, उसमें एक आम तस्वुर ये था, तालिबान ने जो धमकी दी थी वो एएनपी को दी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को और कुछ और जमातों को। लेकिन नून लीग या इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है, इनके जलसे और जुलूसों में किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या ना तो पेश आया और ना ही उनको धमकी दी गई। तो कहा जा रहा था कि तालिबान इनके सिलसिले में, यानी इन जमातों के सिलसिले में, इमरान खान की और नवाज़ शरीफ की, और ये दोनों जमातें तालिबान के सिलसिले में कुछ नरम गोशा रखती हैं। तो क्या अब जो मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत जिस तरह से बयान दे रही हो, जिस तरह से ऑपरेशन की बात करिए, तो क्या ये समझा जाए कि उस वक्त जो तजिया था वो गलत था, सॉफ्ट कॉर्नर वाला?
नहीं वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो तजिया गलत था, इसलिए कि बहरहाल नवाज शरीफ ने आकर ही मुजाकरात की बात की। और देखिए, जब भी मामला होते हैं दो फरीकैन के दरमियान, तो ऐसा गिव एंड टेक तो जरूरी उसमें होता है। ये तो हमने देखा, हर किसी ने देखा कि उन्होंने बिला खौफ खतर और बिला किसी नुकसान के उन्होंने अच्छी कंपेन चलाई, इमरान खान ने भी, नवाज शरीफ ने भी, और उसके बरक्स पीपुल्स पार्टी और दीगर जमातें बिल्कुल अपने कमरे तक महदूद हो गई। तो उस वक्त भी ये सामने आ रहा था कि कोई ट्रेड ऑफ है, कोई कोई ना कोई, ऐसा नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ सब कुछ अपना मनवा ले और कुछ ना दे, ये ऐसा होता नहीं है। तो लिहाजा डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ था, जिसके नतीजे में उनने कहा था कि जिसके नतीजे में हुआ ये कि नवाज शरीफ ने पहले ही दिन से मुजाकरात की बात की और मुजाकरात का अमल चल निकला। अब उसमें कई मसाइल हुए, और सबसे ज्यादा जो कराची के एयरपोर्ट पे हमला हुआ, तो उससे ज्यादा उससे वो सस्टेनेबल नहीं रहा। लेकिन ये कि नवाज शरीफ का इरादा था मुजाकरात का ही, तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि वो जो आप फरमा रहे कि वो गलत था, मैं नहीं समझता कि उसको गलत साबित किया गया है।
जी
ये हालात ही ऐसे बन गए हैं कि अब मुजाकरात इन हालात में हो नहीं सकते, और यानी अब जो हुआ ये होना ही था, इसके बगैर अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो लिहाजा यानी वो नतीजा अखज नहीं किया जा सकता।
बात मुज़ाकरात की तरफ आकर मुड़ी है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी वजूहात थी, वो क्या मसाइल और इलाल असबाब थे जिसकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो सके, कामयाब ना हो सके? शुरू तो हुए, और बता बाज़ाब्ता तरीके से तो शुरू भी नहीं हुए, लेकिन बहरहाल जो एक सिलसिला जुम्बानी थी वो आगे क्यों ना बढ़ सकी?
जी, आपकी आखिरी बात जो है
मैंने
मिसक
कहा
नहीं
कि जो
पहुंची। आप
मुज़ाकरात का
जरा
सिलसिला शुरू
आपने
हुआ तो वो आगे क्यों ना बढ़ सका?
जी उसके देखिए, उसके कई वजूहात हो सकते हैं, और हम और आप, हम तो यानी उन हम तो बहुत ही यकीन के साथ कह सकते थे कि ये हुआ इसलिए मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। लेकिन उसमें जो असल नुकता है, असल पॉइंट जो है, वो ये है कि पहले से ही ये क्लियर नहीं था कि मुजाकरात की बुनियाद क्या है। हुकूमत अगर अमन चाहती है, और हुकूमत का डिक्लेयर्ड एम ये था कि हम अमन चाहते हैं, इसीलिए मुजाकरात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा फ्रीक क्या चाहता है, ये कभी सामने ही नहीं आया। अब अगर हमें मालूम होता कि दूसरा फ्रीक क्या चाहता है, तो हम ये समझते कि शायद उनको वो नहीं मिला इसलिए मुजाकरात नाकाम हुए। अब जो जहां तक असेसमेंट है, जहां तक तजिया है, तो दूसरा फरीक, मैं आपसे कह रहा हूं कि दूसरा फरीक पाकिस्तान की हुकूमत में बाजाबता शिरकत चाहता था, दूसरा फरीक पाकिस्तान के मामलात में अपना इख्तियार चाहता था।
बहुत
और
शुक्रिया, मैं फिर
मेरा
हाजिर हूँगा
अंदाजा है,
आपकी खिदमत
मेरा
में डॉक्टर
तजिया
साहब।
है।
जी, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर और सरकर्दा तजिया नगार और सहाफ़ी जनाब नज़ीर नाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी
जी नज़ीर नाजी साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि 10 जून से जो ऑपरेशन जारी है, इसको देखते हुए आप क्या समझते हैं कि हुकूमत और फौज कितना पुरअज़्म है इस मामले में, और ऑपरेशन को कामयाब बनाने में किस हद तक उनकी पेशकदमी और पेशरफ्त हुई है?
आप ये मौजूदा मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रहे
जी
हैं।
जी जी जी
देखिए हम तो इस वक्त जो होपफुल हैं और अभी तक के नतज भी कुछ बेहतर हैं, लेकिन मैं वो जो पीछे मुजाकरात का कहा था ना डॉक्टर चंद्र रोज
जी,
उसमें वो जब हम फिर थे ऑपरेशन लाजमी हो गया तो वो वहां से डिस्पर्स हो गया, कुछ भाग गए अब अफगानिस्तान की तरफ, कुछ इराक जा पहुंचे और कुछ इधर हमारे अपने जनूबी पंजाब के शहरों में जाकर फैल गए हैं। तो अब वहां पर वो तो दस्तियाब ही नहीं हो रहे, मोर्चे वोर्चे उनके जो बनाए हुए हैं मेरा ख्याल ये तोड़ लेंगे, लेकिन जो तादाद है वो उनकी तादाद 8-10-15 हजार तक भी जाती है और अभी तक पूरे ऑपरेशन में 3-350 हलाक हो सकते थे। तो उनकी जो असल ताकत है वो बिखर गई है, जो ज्यादा खतरनाक है। जब टेररिस्ट अपने अड्डों से निकल कर फैलता है तो फिर तो वो पूरी आबादी को अपना निशाना बनाता है। तो हम दूसरे जो दौर रहेगा ना इस ऑपरेशन की कामयाबी का जब आप ऐलान कर रहे होंगे तो उस वक्त हमें ये भी देखना होगा कि हमारे शहरों में कितने ये फैल चुके हैं और कैसी कैसी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो हम एक बहुत तभी जद्दोजहद में फंसने वाले हैं
जी। नज़ीर नाजी साहब, बाज़ हलकों का यह ख्याल है, अभी हमारे लंदन के मेहमान भी कह रहे थे कि कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि फ़ौज ने खुद पेशकदमी की है, आगे बढ़कर यह ऑपरेशन की कमान संभाली है और शायद हुकूमत इस कदर मायल नहीं थी। तो क्या समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन जारी है इसमें हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कहीं ना कहीं हमांगी का कुछ फ़ुकदान है थोड़ा बहुत?
बहुत ही वाजे है क्योंकि हुकूमत को ऐलान बैन करने के लिए तैयार नहीं थी, ऑपरेशन के ऐलान करने के लिए तैयार नहीं थी और हुकूमत मुजाकरात भी जारी रखना चाहती थी, लेकिन ये मेरा ये ख्याल है कि जो अस्करी लेते हैं वो इस सूरत हाल को देख रहे थे कि ये जो दौर भी जितना इस मुजाकरात की वजह से जितने लोग वहां से निकले हैं उसका भी जाहिर है फौज के इल्म है, तो वो फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करना चाहते थे। तो उसके मेरा ख्याल है बादल खासा इस हुकूमत को हमारे और हुकूमत ने भी मेरा ख्याल 3-4 करोड़ के बाद जाकर के थी इस लोकेशन की ओनरशिप ली है, वरना उससे पहले तो ओनरशिप भी नहीं ली थी। अच्छा कि वजी अजम ने जो तबलील की थी इसमें सड़क में उसमें वो कोई इरादे जान टाइप की चीज़ नहीं थी, जैसे तकरीरें होती हैं ऐसे मौके पर की जाती हैं अवाम के जो जज्बे इजाफा करने वाली तकरीरें, वो तकरीर तो अभी तक भी नहीं हुई है भी।
जी नज़ीर नाजी साहब, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा इस मरहले पर कि आप देखें कि जुनूबी वज़ीरिस्तान में भी ऑपरेशन हुआ, मालाकंड डिवीज़न में भी ऑपरेशन हुआ और अब शुमाली वज़ीरिस्तान में, तो होना तो ये चाहिए था कि जुनूबी वज़ीरिस्तान और या मालाकंड डिवीज़न में जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कम होती, लेकिन न सिर्फ ये कि कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। तो जो मालाकंड डिवीज़न में या जुनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया गया था फ़ौज की जानिब से, उसके कुछ फ़वाद आपको नज़र आए?
सारे ऑपरेशन के थे ना ये उस जमाने में हमारे दोगले हुकुमरानों की पॉलिसियों का नतीजा थे कि ये फेल हुए। उसकी वजह ये है कि एक इन्होंने गुट तालिबान रखे हुए थे जो इनकी तरफ से जाके अफगानिस्तान के अंदर तकरीबदारी करते थे और एक इन्होंने टैक्स तालिबान रखे थे जो इनके खिलाफ लड़ते थे। उसके बाद वो एक ही जगह रहते थे, एक ही इनके ठिकाने थे, एक ही जैसीन जारी थी, तो उन पर अब ये करते क्या थे कि जो इनको अपने दुश्मन लगाते थे उनको मारते थे और जो इनके एजेंट थे उनको छोड़ते थे, तो ऐसी तकसीम करके वो कोई भी ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका। और शुमाली बलोचिस्तान के भी जो जिन्होंने ठिकाने बनाए थे जाके ये सारे हुकूमत अफगानी ग्रुप और दूसरे ग्रुप ये उनके सारा शुमाली बलोचिस्तान जो छोड़ दिया गया था, लेकिन टेररिस्ट होता है उनके साथ दूसरे आगे नहीं गए जो पाकिस्तान में भी हमले करते। अब है कि अब जो फर्क है इसमें वो ये है कि अब ये पूरे के पूरे जो जितने भी दहशतगर्द हैं बिना इम्तियाज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्या कम से कम दावा ये किया जा रहा है। अगर ऐसा है फिर तो इसका कोई नतीजा निकल जाएगा, लेकिन अगर अब भी कोई ऐसा किया गया है गुड तालिबान बैड तालिबान की च्वाइस रखी गई तो फिर मेरा ख्याल ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा।
जी नज़ीर नाजी साहब, मैं आपसे इस मरहले पर सवाल ना करता, लेकिन चूंकि आपने तालिबान की जो तकसीम की बात की तो बाज़ हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो अलकायदा से वाबस्ता अफराद हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है या महसूद जो ग्रुप है उसको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही सैयद सजना जो ग्रुप है उसको महफूज रखा जा रहा है, तो क्या ये बात किसी हद तक सही है?
जी, मैंने तो ये है ना कि अगर ये ऐसी कोशिश की गई तो फिर ये ऑपरेशन भी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका ये कल आज अगर ये सजना ग्रुप को छोड़ रहे हैं तो बहुत सारे जाके सजना ग्रुप में मिल जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे, तो फिर वो सफाया नहीं हो पाएगा।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में। अंदराबी साहब, मैं पूछना चाहूंगा, आपने अपने गुफ्तगू में मजहबी जमातों की तरफ इशारा किया था कि उनको इस ऑपरेशन पर तहफ्फुज़ात हैं। आप देखें कि जब कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ था तो जमात इस्लामी ने उसकी मजम्मत की थी, और अब जब ऑपरेशन हो रहा है तो आपके बकौल ये बहुत से हल्के ये कह रहे हैं कि उन जमातों को तहफ्फुज़ात हैं, तो ऐसा क्यों?
देखिए, मेरा ये असेसमेंट है कि ये जो जमातें हैं और जिनमें बिलखसूस जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी जो पाकिस्तान के इमरजेंस के बाद ही 1947 के बाद ही पाकिस्तान में एक टारगेटेड एजेंडा परस्यू कर रही है, और बकौल उनके वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी काम किया, वो शायद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनकी ये तमाम कोशिशें जो है वो कुछ हासिल नहीं हुआ। वो शायद इस नतीजे पर आए हैं कि वो ये अस्करियत जो पाकिस्तान में पैदा हुई और तालिबान जो पैदा हुए, तो वो समझ रहे हैं कि शायद इनके कंधों पर वो अब अपनी बंदूक जो है रख सकते हैं, वो इनके सहारे, वो ये कह के कि इनके साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन इसके जो पॉलिटिकल फ्रूट्स होंगे, इसके जो सियासी नताइज होंगे, वो हासिल करेंगे। इसीलिए अगर आप इसको जरा क्लोजली देखें, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो मुज़ाकरात के लिए इंथ्यूजाजम जिनमें है, जो वकालत कर रहे हैं, वो जमात इस्लामी है, इसलिए कि वो ये शायद वो इस जाम में मुबतला है कि हम पाकिस्तान की ममलकत में वहाँ के इख्तदार में अपना हिस्सा अगर हासिल कर सकें तो रास्ता यही है। तो ये मेरा अंदाज़ा है, यानी ये मेरी असेसमेंट है, तो इसीलिए वो इसकी जो है वो हालांकि कराची का जो वो सानिया हुआ वहाँ के एयरपोर्ट पर जो हुआ, यानी ये बिल्कुल साफ है कि वो लोग जो कौमी असासों को निशाना बनाते हैं वो दुश्मन ही हो सकते हैं। यानी मुल्क के अंदर रहने वाले दहशतगर्द अगर दुश्मन नहीं है तो वो कौमी असासों को निशाना नहीं बनाते, लेकिन कौमी असासों को निशाना बनाने वाले ये तो दुश्मन कैटेगराइज होते हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ फिर मुज़ाकरात की वकालत जो है ये कुछ इसका कुछ तुक नहीं बनता। तो मेरी यही राय है कि ये लोग समझते हैं कि ये इनको यानी इसी तरीके से ये कुछ पॉलिटिकल पावर हासिल कर सकेंगे।
जी नजीर नाजी साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप?
जी,
जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके एक ही दो दिन बाद अमेरिका की तरफ से ये बयान आ गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले हमसे हम आहंगी नहीं की। अमेरिका के इस बयान को क्या ऑपरेशन की मुखालफत समझा जाए?
जी, मेरा ख्याल है कि अमेरिका के साथ जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो जनरल मुशर्रफ के जमाने में ही खत्म हो गई थी। वो उसके आपको सबसे बड़ा जो है सबूत वो तो मिलता है बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में भी, कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को ऑपरेशन किया तो जो बहस चली उस वजह कि पाकिस्तान को इतमाद में लिया गया या नहीं, तो वहाँ फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान कारगर इतमाद नहीं है। तो वो जो है ना एक बेतमादी वो आज भी मौजूद है, और आप देखते होंगे कि कभी कभी जो कांग्रेस में मूव आती है कि हमारे वो जो मिशन स्पोर्ट फंड है जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरक जंग के लिए अमरीका ने हिस्सा देना होता है वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त भी वो पूरी तरह ट्रस्ट हम पर नहीं कर रहे।
जी मैं आपसे अगला सवाल भी यही करना चाहूँगा कि एक तरफ तो अमेरिका ये बयान दे रहा है कि हमसे हम मांगी नहीं हुई, और दूसरे दोबारा जो है वो 6 महीने या 7 महीने के वक्फे के बाद उसने ड्रोन हमले फिर शुरू कर दिए, तो ये कैसे मान लिया जाए कि हम मांगी नहीं है?
ठीक है, वो ये सब दिखाने की बातें हैं। अमलन जो कुछ अमरीका कर रहा है वो जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। वो एक देखिए जी, पूरे खत्ते में दो मुल्क हैं, एक ईरान और एक पाकिस्तान, जिनके पास अपनी फौज है और काफी मुनज़्ज़म और काफी ताकतवर फौज है। तो बाकी तो सारे आपने देखा है, मिडिल ईस्ट में सारी उन्होंने फौजें सारी रियासतें रियाती सबको बर्बाद करती रही है। तो अब अफगानिस्तान में भी यही सूरत हाल है। तो ये दो मुल्क बचे हुए हैं, मेरे ख्याल सबसे बड़ा निशाना पाकिस्तान है। वो यहाँ के जो है सिस्टम को, जो भी रहा था सिस्टम है उसके ब्यूरोक्रेसी का, आर्मी की मुनज़्ज़म फौज है, वो इसके लिए मुश्किल पैदा करना चाहते हैं और इसके और अवाम के दरमियान तशद्दुद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये होगा कि पूरी सिस्टम को दहशतगर्दी के लिए थोड़ा थोड़ा जाए, और जब ये फौज मजबूर हो जाए शहरों में ऑपरेशन करने पर, तो फौज जाहिर है बिखरेगी, और जब फौज को एच पी ऑपरेशन करना पड़े तो फिर उसका डिसिप्लिन भी निकाल सकता है। क्योंकि जब अपनों पर गोलियां चलाई जाती हैं तो फिर हर फौजी जो होता है वो खुशी से नहीं कर पाता, ये उसके अपने भाई भी गोली के निशान लगा होते हैं। तो ऐसी सूरत में वो फिर बहुत ही अफरा तफरी फैलती है और मुंतशर हो जाते हैं सारे। ये होती है एनआरसी की वो कैफियत जो इराक में पैदा हुई, जो सीरिया में है, जो लीबिया में है, और अब हमारे यहाँ कोशिश की जा रही है इसे लाने की।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊँगा। अंद्राबी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जबकि 2014 ख़त्म होने वाला है और अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला मुकम्मल होने को है, तो क्या समझा जाए कि ये जो ऑपरेशन है इसका ताल्लुक 2014 के अख्ताम से भी कुछ है?
जी डेफिनेटली है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है और ये ऑपरेशन जो है इसका डेफिनेटली उसके साथ ताल्लुक है, इससे कि वहाँ बिल्कुल हकाइक बदल जाएंगे। अमेरिका की जो विड्रॉवल है, गर्च अमेरिका की एक खासी फौज वहाँ रहेगी लेकिन उसकी जो विड्रॉवल है और उसके जो कम्बैट ऑपरेशंस का खात्मा है, तो उससे सूरत हाल वहाँ नेचुरली बदल जाएगी। और अभी जो हम बात कर रहे थे, अभी नाजी साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, वो गुड और बैड तालिबान का, तो उसमें गुड़ तालिबान तो वही समझे जाते थे जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना करें, अगरचे वो अफगानिस्तान में जाके वहाँ कार्रवाई करें। लेकिन अभी आज ही बयान आया था पाकिस्तानी फौज का कि वो बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई कर रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में, और उसमें वो हक्कानी नेटवर्क को भी शामिल कर रहे हैं, उसको वो भी कार्रवाई की जद में आएगी। तो अभी तक तो हक्कानी नेटवर्क जैसे लोग जो है वो गुड़ तालिबान में शामिल होते थे, तो उसका मतलब यह है कि वो अफगानिस्तान को भी एश्योर करना चाहते हैं पाकिस्तान कि पाकिस्तान वहाँ अमन और इस्तेहकाम के सिलसिले में बिल्कुल सिंसेर है, इससे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो ये मसला है, अगरचि अफगानिस्तान की यानी कितने बहुत सारे पनाह गुजीर पाकिस्तान में हैं, और उस एतबार से अफगानिस्तान को जो है पाकिस्तान का ममनून होना चाहिए था, लेकिन अफगानिस्तान में यही मसला है, वहाँ वहाँ ये प्रॉब्लम है लोगों के अंदर कि पाकिस्तान हमें अपने अंदाज में जीने नहीं दे रहा है, पाकिस्तान यहाँ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस है। तो लिहाजा अगर पाकिस्तान ये एक मैसेज दे उनको कि वो बिल्कुल सिंसेर है वहाँ के मामलात में और वहाँ के अमन इस्तेहकाम में, तो ये एक अच्छी बात है। और इसकी ये जो हकानी नेटवर्क की मैं बात कर रहा था, तो इसका ताल्लुक बराह रास्त उसी चीज़ से जो आप कह रहे हैं कि जब अमरीकी फौज निकले और जब अफगानिस्तान में इन लोगों के लिए ज़रा मैदान हमवार हो जाए, तो उस वक्त अगर ऐसे लोग ना हों जो अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करें, और तो वो पाकिस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी बेहतर रहेगा।
जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे मेहमानों से हमारी गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर सा एक वक्फा लेते हैं। जी एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, नाजी साहब, अफगानिस्तान का एक वफद इस्लामाबाद का दौरा अभी उसने किया है दुरुस्त कबल, आप क्या समझते हैं कि ऑपरेशन के ताल्लुक से ये दौरा कितना मददगार साबित हुआ होगा पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के लिए?
जी
जी, जो अफगानिस्तान का एक वफद आया था, दाद سپنتا کی قیادت میں، دادفر رنگین دادفر سپنتا کی قیادت میں جو قومی سلامتی کے امور کے مشیر ہیں افغانستان کے، وہ ایک وفد لے کر اسلام آباد آئے تھے جی، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپریشن کے تعلق سے کتنا مددگار ثابت ہوا ہوگا یہ دورہ؟
کوئی معاملہ طے ہو سکتا ہے
جی.
اچھا ایک اور چیز خود ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہے کیا ہے کہ امریکہ پاکستان میں انسٹیبلٹی چاہتا ہے تو اس کے لیے انسٹرومنٹ وہ کہاں کون سا استعمال کرے گا؟ افغانستان ہے اس کے پاس، اور چونکہ یہ انڈیا بھی یہی چاہتا ہے تو اس وقت جو کنٹرول ہے افغانستان کا وہ ہے اس گروپ کے پاس جو شمالی اتحاد والے ہیں، وہ ہندوستان کے اتحادی، اور یہ کلوئی بھی خود ہندوستان ہی کا ایجنٹ تھا. تو ان لوگوں نے ہمیشہ ہی پاکستان کے تحت کشمیری اتحاد والے رکھے، وہاں پر کوئی بھروسہ نہیں کیا اور ہمیشہ چھڑا بھوکنے کی کوشش کی ہماری پیٹ میں، اور اب بھی وہی پالیسی چل رہی ہے
جی. نظیر ناجی صاحب، حکومت پاکستان نے مطالبہ کیا افغانستان سے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران جو دہشت گرد افغانستان کی جانب فرار کر رہے ہیں ان کو وہ کنٹرول کرے، تو کیا یہ مانا جائے کہ افغانستان کی حکومت نے کوئی چھوٹ دے رکھی ہے؟
بالکل جی، وہ جو سوات والا تھا مولوی فضل اللہ، اس کو تو پورے ٹریننگ کیمپ ملے ہوئے ہیں اور اس کے بندے آگے حکومت کاروائیاں کرتے ہیں
جی. میں جب بات کرتا ہوں یا سبھی جب بات کرتے ہیں افغانستان اور پاکستان، اور خاص طور پر پاکستان کی، تو ظاہر ہے اس میں افغانستان کا معاملہ ضرور اٹھتا ہے. آپ دیکھیں کہ شمالی وزیرستان میں حکومت اور فوج کا یہ کہنا ہے پاکستان کی کہ زیادہ تر غیر ملکی افراد مارے گئے ہیں جن کا تعلق القاعدہ سے. ظاہر ہے کہ یہ لوگ صرف شمالی وزیرستان تک تو محدود نہیں ہوں گے، یہ افغانستان میں بھی ہوں گے. حامد کرزئی کا کہنا ہے کہ القاعدہ کا وجود افغانستان سے ختم ہو گیا ہے، اور امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ اگر فوج نکل جائے گی، غیر ملکی فوج، تو افغانستان کا حال بھی عراق جیسا ہو جائے گا. تو کیا مانا جائے کہ یہ ایک طرح سے پریشر ڈالنے کی بات ہو رہی ہے امریکہ کی طرف سے، یا جو افغانستان کے ساتھ حامد کرزئی کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے؟
میرا خیال ہے جی کہ اب افغانستان یا پاکستان میں القاعدہ کوئی ایسی مؤثر ترجیح نہیں دے گئی. البتہ اب اس کے جو لوگ تھے ٹرینڈ جو ٹیررسٹ ہیں وہ مختلف گروہوں میں شامل ہو چکے ہیں، تو وہ پالیسیاں ان گروہوں کی ہوتی ہیں جو مقامی ہیں. ہمارے یہاں بھی افغانستان میں افغانستان ملا عمر ہے، یہاں بھی بے شک یہ الگ الگ ان کی تنظیمیں ہیں طالبات کی، یہ دہشت گردوں کی، لیکن میں وہ امام اپنا اسی کو مانتے ہیں تو ملا عمر کو، تو حکم اسی کے چلتا ہے پاکستانی طالبان پر بھی
جی. بہت بہت شکریہ ناظرین ناجی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین اس وقت ہمارا رابطہ ہوا اسلام آباد میں پاکستان کی ایک اور سرکردہ اور سینئر تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ سے. السلام علیکم جناب محترمہ.
وعلیکم السلام.
محترمہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب جب کہ آپریشن جاری ہے تو ایک نئی صورتحال نے جنم لیا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، بنوں اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں اور شہروں میں ان کو بسایا جا رہا ہے، کیمپ لگائے جا رہے ہیں، آباد کیا جا رہا ہے. حکومت اس بڑی جو مشکل ہے پناہ گزینوں کی اور ان کو مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کرنے کے تعلق سے جو اس کو چیلنجز درپیش ہیں، کس طرح سے نمٹے گی؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بالکل اہم بات ہے کہ پاکستان ملک میں امن کے حوالے سے انتہائی اہم جنگ جو ہے اس میں شامل ہو چکا ہے، اور اس سے یقیناً ابھی جو تقریباً 4.5 لاکھ کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اندازہ یہی ہے کہ تقریباً 6-7 لاکھ افراد جو ہیں وہ بے گھر ہوں گے. اب ان کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں حکومتی سطح پہ، میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی انتظامات کیے گئے وہ اتنے بہتر نہیں ہو سکتے. زیادہ سے زیادہ اس میں اس کے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت ہے، اور دوسرا پاکستانی کمیونٹی کو بھی اس میں یقیناً اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور سب سے زیادہ دیکھیں سنجیدہ مسئلہ یہ ہے کہ 2 روز کے بعد رمضان شریف کا جو ہے آغاز ہو رہا ہے، اور پاکستان میں ایک بڑی آبادی جو ہے وہ روزے ضرور رکھتی ہے، اور خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ علاقے جو فاٹا یا خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بہت ہی سختی سے روزے جو ہے اس کی پابندی کی جاتی ہے. اب اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں یہ جنگ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ملک میں امن کا قیام کس طرح لایا جائے، اسی طرح یہ چیلنج اتنا بڑا ہے. گو حکومت اپنی سطح پہ فوری طور پہ اس نے بجٹ میں بھی اس سے پہلے بھی کچھ پیسے ریلیز کر دیے، صوبائی حکومتیں کر رہے ہیں، ریجنز کچھ کر رہے ہیں، کچھ इंटरनेशनल डोनर्स की तरफ से भी कुछ बात की जा रही है, लेकिन ये कितनी मुद्दत के लिए होगा क्योंकि उसका तयन नहीं किया जा सकता। मैं समझती हूँ कि बहुत संगीन मसला होगा कि अगर ये ऑपरेशन ज्यादा तवानत इख्तियार कर लेता है और ये आईडीपीज के बारे में एक मैं बात कह दूँ कि हमारे ये जो इलाके हैं खासतौर पर ये फाटा से रिलेटेड या वजीरिस्तान से, तो इनकी कुछ रवायात ऐसी है कि पर्दे के हवाले से खवातीन जो है वो एक इनकी लिविंग का स्टाइल ऐसा है कि उनके लिए कैंपों में रहना भी मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग जो है वो घरों में जा रहे हैं लेकिन उनके लिए कैंपों का बहुत मुश्किल है। गर्मी यहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, बन्नू का इलाका या इसके गिरदनवा के इलाके जितने भी हैं उसमें शदीद गर्मी है। मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जब तक पूरे मुल्क के जो अफराद हैं वो अपना इसमें किरदार अदा नहीं करते हैं, बिलखसूस रमजान उल मुबारक में, तो ये यकीनन एक तकलीफ की सूरत हाल होगी।
जी मोहतरमा, हमारे पास डेढ़ मिनट से भी कम वक्त बचा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या माह मुबारक की आमद की मुनासिबत से यह ऑपरेशन रुक जाएगा या हुकूमत और फौज ने एक फैसलाकुन ऑपरेशन का मूड बना लिया?
देखिए मुझे लगता है कि ऑपरेशन तो नहीं रुकेगा, और क्योंकि जब भी ऑपरेशन रोका गया है ये दहशत गर्द के हवाले से जो बात की जाती है वो दूसरी जगह पे फैल जाते हैं। अभी उन्होंने कोई कॉर्डन किया है और उस पर जो कुछ मखसूस जगह पे हो रहा है, अभी बहुत वसी इलाका जो है उसमें ऑपरेशन नहीं है, जो मखसूस इलाके जिसमें हो रहा है मेरा ख्याल है कि रमजान मुबारक में कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं देते या किसी तरह से कोई ऐसा एरिया नहीं दिखाई दिया कि वो ऑपरेशन रोका जाएगा। ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा लेकिन हो सकता है कि इतनी शिद्दत से या जिस जो एक पैटर्न बनाया गया है उसमें थोड़ी सी कमी हो, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि शायद ऑपरेशन रोका नहीं जाएगा रमजान मुबारक में भी और इसके बाद भी अगर ये है, क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान से भी कुछ दरअंदाजी भी हो रही है, कुछ इस तरह के मामला भी चल रहे हैं, तो अगर थोड़ा भी इसमें तातुल हुआ तो वो एक जो पहले माजी में भी हमारे साथ सूरत होती रही है, मुश्किल बढ़ती रही है, तो इस तरह की मुश्किल जो है वो मुझे लगता है कि फिर आ सकती है और
बहुत शुक्रिया आपका,
मुस्तकिल हो सकते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहज़ा फरमाई। बहरहाल पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन जारी है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की अक्सरियत इस वक्त फ़ौज और हुकूमत के साथ है और मुल्क का बच्चा बच्चा और हर शहरी यही चाहता है कि मुल्क में अमन कायम हो, तो मुज़ाकरात के ज़रिए अगर अमन कायम ना हो सका तो ज़ाहिर है कि फ़ौज और हुकूमत का अब यही कहना है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तो देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासिज़ भी और दीगर साथियों को